लघु वासुदेव मननम। कल ये बात हुई कि जो ये सात चीजें हैं, दुख, जन्म, कर्म, राग द्वेष आदि, अभिमान, अविवेक और अज्ञान, जिस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान के सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं है। ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है, महाभारत के उपाख्यान के माध्यम से भी हम लोगों ने इस पर विचार किया, श्रवण किया। गीता में जैसा कि बताया कि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टः स्याम इति मे मतिः। भगवान ने कहा कि हम दोनों का जो ये संवाद है, इसको जो लोग भी पढ़ेंगे, अध्येष्यते मतलब पढ़ेंगे, जो इमं धर्म्यं, ऐसा धर्म्य का मतलब होता है जिसमें अधर्म का स्पर्श भी न हो, उसी को बोलते धर्म्य। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा नौवें अध्याय में भी धर्म्य का नाम लिया और वहां पर भगवान कह रहे हैं धर्म्यम संवाद मावयो, पुण्य और पाप आदि के धर्मों से जो रहित शुद्ध जो ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा जो हम दोनों का संवाद, आवयो हो संवादम, ज्ञान यज्ञेन तेन, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा अहम इष्टः, मैं ही जिसका इष्ट हूं, ये मेरा मत है। जो इस प्रकार से गीता को पढ़ेंगे वह मुझे परमात्मा के रूप में अवश्य जानेंगे। तो ज्ञान की महिमा से बहुत जगह बताई गई है। वासुदेव यति कह रहे हैं कि जो ये दुख है, दुख आदि ये समस्त अनर्थ का स्वरूप है, सातों में से एक भी चीज अच्छी नहीं है, केवल दुख ही हो अनर्थकारी, जन्म लेना ठीक हो तो ऐसा नहीं, दुख से लेकर अज्ञान पर्यंत और अज्ञान से लेकर के दुख समेत जितने भी ये सब के सब क्या है, अनर्थकारी, अनर्थक, इसलिए कोई भी चीज इसमें से अच्छी है ही नहीं। और जैसे बोलते हैं ना, एक बार कोई जड़ लग जाए, बीज लग जाए तो धीरे धीरे अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित होगा, तो अज्ञान का जब ये पेड़ लगा तो उसी में से फिर अविवेक आ गया, अविवेक ने अभिमान को उत्पन्न कर दिया, तो पूर्व पूर्व के प्रति उत्तर उत्तर जो है कारण है, दुख का कारण है, जन्म जन्म का कारण है कर्म, ऐसा क्रम से बताया था। अब ये जो दुख आदि का नाम लिया, कहते हैं कि हम मनुष्यों के अंदर, जीवात्माओं के अंदर होने वाला जो ये दुख है, स्वाभाविक है अथवा आगंतुक है, तो ऐसा प्रश्न और उत्तर के माध्यम से गुरु शिष्य का संवाद बनाकर आचार्य ने इसके ऊपर बड़ा मंथन किया है, मनन किया है। जीवात्मनो दुखम स्वाभाविकम वा आगंतुकम वा इति चेत, जीवात्माओं का जो ये दुख है स्वाभाविक है अथवा आगंतुक है, आगंतुकम इति ज्ञेयम, ऐसा मान लेना चाहिए कि ये आगंतुक ही है। स्वाभाविकम इति चेत अनेक दोषाः सन्ति, यदि दुख को स्वाभाविक मानेंगे तो इसमें अनेक दोष आएंगे, वो दोष क्या वो भी आगे बता रहे हैं। आगंतुक मानने में कोई बात नहीं, लेकिन स्वाभाविक मानने में जो दोष आपत्ति है, तत्कथम इति चेत, तो क्या है दोष, तो अस्य जीवात्मनो दुखम स्वाभाविकम चेद दुख निवृत्ति कदाचिदपि न स्यात्। यदि दुख को जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप मान लिया जाए तो ऐसे दुख की निवृत्ति कभी भी होगी ही नहीं। ये सब हमारे काम की चीजें हैं, जरूर आप लोग ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि हम दुखी क्यों होते हैं, ये दुख क्यों आता है, कहां से आता है, क्यों नहीं चला जाता हमेशा हमेशा के लिए। जो दुख जिस समय आता है उस समय तो दुख देता ही है, उसके आने का यदि भय हो मन में तो उसी समय कितना दुख होने लगता है। कोई कह देवे कि अगले साल आपके एक्सीडेंट में पैर टूटने वाला है, तो अभी साल भर का टेंशन अभी से मिल गया ना। तो इसलिए कई बार ज्योतिषियों के पास जाके बोलते हमारा क्या होने वाला है क्या, तो लोग बोलते भाई ये सब मत दिखाओ, नहीं है पता तो शांति से तो बैठे। कहीं ज्योतिष ने कह दिया अगले साल आपके पैर टूटने से आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर क्या होगा, अभी से टेंशन शुरू। तो जो दुख हम वर्तमान में अनुभव करते हैं उसी दुख का यदि भविष्य में आने वाला है, तो वर्तमान में तो जब आता तब दुख देता, लेकिन अभी से जो उस दुख का स्मरण करके हम दुखी होने लगे, ये आ बैल मुझे मार वाली बात है। ऐसे ही सबको पता है कि एक दिन मरण होने वाला है, बाकी दुखों की तो बात छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा है, मरण, मृत्यु। और इस दुख का सामना सबको करना है। कल बताया था कि हम लोग अपने जन्म और मृत्यु तो दूसरों के जन्म मृत्यु को देखकर अनुमान करते हैं। छोटे बच्चे को देखा जन्म लेते हुए, अपना जन्म किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने अपना मरण देखा है। अपने से बड़ों को मरते हुए देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि मरने में क्या कष्ट है, और जन्म लेने वाले नवजात बालक को, शिशु को देखकर पता चलता है कि जन्म में कितना दुख है, कितना कष्ट है। तो जैसे हम अपने जन्म और मृत्यु को देखे तो नहीं, अनुमान करके ही समझ लेते कितना दुखदायी है। अब जो बाकी बीच का जो जीवन है ये कौन सा सुखरूप है, विचार की तो बात चल रही है। भोजन न मिले तो परेशानी, मिल गया ज्यादा खा लिया तो परेशानी, मिला लेकिन भरपेट खाने को नहीं मिला तो भी दुख। तो ऐसी कोई चीज बताइए जो हमेशा सुखरूप हो, कोई भी चीज ले लो आप दुनिया में, आंख बंद करके ध्यान लगा के घर में जाके आप विचार कर लेना कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा सुखरूप रहती हो। प्रत्येक वस्तुओं में दुख के सिवाय कुछ है नहीं, और जो सुखरूपता हमें भासती भी है वह सुख का आभास है, वास्तव में वह सुख है नहीं, आभास को ही हम लोगों ने वास्तव में मान लिया। इसलिए चेतन की तरह जो भासता है इसलिए उसका नाम है चिदाभास, चेतन है नहीं, चेतन की तरह उसमें हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी संसार के सुख रूप हैं, क्योंकि सुख तो परमात्मा का आनंद रूप है जो परमात्मा, और वस्तुओं में आनंद रूपता है नहीं, हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं। इसलिए बार बार चिंतन करने से पता चल जाता है कि परमात्मा के सिवाय दुनिया में कोई भी वस्तु आनंद स्वरूप है नहीं। अतः स्वाभाविक यदि माने कि जीवात्मा का दुख स्वभाव से ही है तो कभी भी इसकी निवृत्ति नहीं होगी, एक तो ये दोष आएगा। दूसरा, सुखमपि कस्यापि न स्यात्, दुख की निवृत्ति तो होगी ही नहीं, एक तो ये दोष पहले बता दिया, और दूसरा कहा कि सुख कभी किसी को होगा ही नहीं, क्योंकि अब है आपका दुख ही आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है। स्वभाव और स्वरूप एक ही बात है, ये आगे सुस्पष्ट करेंगे आचार्य, स्वभाव और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। तो दुख हमारा स्वभाव है, मतलब दुख आपका यदि स्वरूप होगा तो सुख कभी आपको प्राप्त होगा ही नहीं, एक ये दोष आएगा। तीसरा क्या होगा, जो लोग दुख को हटाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करते हैं, भाई अच्छे कर्म करो सुख मिलेगा पुण्य होगा, ऐसे कोई कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि दुख तो हमारा अपना स्वभाव है, ये कभी जाने वाला है नहीं, क्यों सत्कर्म करें, किसके लिए करें, ये बात आएगी। योग करना, ध्यान करना, उपासना करना, जितने भी ये प्रयत्न किए जाते हैं, सब के सब दुख को हटाने के लिए और सुख पाने के लिए। यदि दुख को अपना स्वभाव मानेंगे तो ध्यान, कर्म, योग, उपासना, सत्कर्म आदि में कोई प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि ये सब किसने करेंगे फिर? जिसके लिए करना है वो तो होना है नहीं, तो फिर इसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। और सुख कभी किसी को होगा नहीं, दूसरा दोष, और तीसरा दुख की निवृत्ति कभी होगी ही नहीं। ये सारे दोष कब आएंगे? जब जीवात्मा के दुख को स्वाभाविक माना जाएगा तब। समझ में तो आ ही रहा है? वेद शास्त्र पुराणानि च व्यर्थानि शिव इति जानी ही। वेद शास्त्र आदि भी सब व्यर्थ हो जाएंगे, कोई नहीं वेद को पढ़ेगा न वेद के अनुसार आचरण करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपना तो दुख स्वभाव है, ये कभी जाने वाला है नहीं, इसलिए कोई कुछ करेगा ही नहीं। दुख हट जाता है तब भी हमारी इतनी प्रवृत्ति नहीं होती, और दुख हटेगा ही नहीं तब कौन प्रवृत्त होगा, बताइए। इसीलिए ननु दुखम स्वाभाविकम अस्तु तन्निवृत्ति च प्रयत्नम करोतु इति चेत। यदि दुख को स्वाभाविक मान करके और उसके निवृत्ति के लिए प्रयास तो कर सकते हैं, कदापि एतन्न संभवति स्वाभाविकस्य स्वस्वरूपत्वात्। अरे भाई, हमने पहले ही कह दिया कि यदि दुख को स्वाभाविक मानोगे तो स्वाभाविक मतलब स्वस्वरूपत्वात्। स्वाभाविक कहिए और स्वस्वरूप कहिए, एक ही बात है। एक तो स्वभाव हम लोग प्रकृति के लिए प्रयोग करते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, लेकिन यहां स्वभाव का मतलब हो गया और स्वभाव, स्वयं का भाव। अच्छा, हम लोगों के अंदर का जो स्वयं स्वभाव बोलते हैं ना, वो प्रायः मनस्थिति को लेके बोलते हैं, बोलचाल को लेके बोलते हैं। देखा जाए तो यहां पर इन्होंने स्वभाव का अर्थ कर दिया स्वस्वरूप। स्वस्वरूप का मतलब हो गया आत्मस्वरूप। तो स्वस्वरूपत्वात् स्वाभाविकस्य, कभी भी इस दुख की निवृत्ति होगी नहीं, क्योंकि वो अपना स्वरूप हो जाएगा। और स्वस्वरूप नाशार्थम को वा प्रयत्नम कुर्यात्। यदि इस दुख को अपना स्वस्वरूप मानोगे तो कोई भी अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहेगा क्या? दुख यदि हमारा अपना स्वरूप होने लग जाएगा तो कोई इसको नष्ट करना चाहेगा? जबकि स्वस्वरूप को तो लोग बनाए रखना चाहते हैं, और दुख हमारा स्वस्वरूप हो गया तो कहेंगे अच्छा है, जो दुख है ये ऐसा ही बना रहे, इसको कभी हटाना नहीं है। और स्वस्वरूप नाशे सती पुरुषार्था भाव स्यात्। स्वस्वरूप का नाश यदि होने लग जाएगा तो कोई भी पुरुषार्थ करेगा नहीं, पुरुषार्थ का अभाव भी होने लग जाएगा। कब? जब दुख को स्वाभाविक मानेंगे तब। ये सब अभी दोष ही बता रहे हैं। दुख को यदि अपना स्वभाव मानेंगे हम लोग तो क्या क्या दोष आ रहे हैं, ये सब आप लोग अभी श्रवण कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला दोष बता दिया कि दुख की निवृत्ति कोई करेगा ही नहीं, कभी होगी नहीं, सुख की कभी प्राप्ति नहीं होगी, सत्कर्म, योग, ध्यान, उपासना आदि में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। स्वभाव का मतलब स्वस्वरूप, स्वस्वरूप का कोई नाश करना नहीं चाहता, नाश करने नहीं चाहेंगे तो पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। इतने सारे दोष आए। अब कहते हैं, अरे आप कहते हैं स्वाभाविक और स्वरूप एक ही चीज है, ये कैसे? अब ये शंका उठाई कि स्वाभाविकम एव स्वस्वरूपम कथम इति चेत। तो कहते हैं देखो, उदाहरण दिया। संस्कृत में जो हम लोग हिंदी में गुड़ बोलते हैं, संस्कृत में भी गुड़ बोलते हैं। गुड़स्य मधुर गुण स्वभाव। गुड़ का अपना जो स्वभाव है वो क्या है? मधुर गुण, ये उसका अपना स्वभाव है। यदि कोई कहे कि मधुरता जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, गुड़ तो हमें चाहिए लेकिन मधुरता को हटा करके दो, हो सकता है ऐसा? गुड़ का जो मधुरपना है, जो उसकी मधुरता है, ये उसका अपना स्वरूप है। तो मधुर स्वभाव कहिए, मधुर गुण कहिए और मधुर स्वरूप कहिए, एक ही बात है। ठीक है, वो देखने में ब्राउन कलर है, देसी नाम रख दो, विदेशी नाम रख दो, गुड़ का टुकड़ा हो जाएगा, भेली आ जाएगी बड़ी बड़ी, वो सब तो कहने के लिए नाम है अलग अलग, लेकिन वास्तव में गुड़ का जो अपना मधुर स्वरूप है, उस मधुरता से गुड़ को यदि अलग करने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें गुड़ उपलब्ध होगा? गुड़ जब जब उपलब्ध होगा तो मधुरता के साथ ही उपलब्ध होगा। मधुरता बनाम गुड़, गुड़ बनाम मधुरता। कई बार जब बोलते हैं मुंह मीठा हो जाए, और घर में कोई मिठाई नहीं है, तो पुराने जमाने में यही तो था, गुड़ और पानी। कोई मेहमान आ गए घर में तो क्या देते थे? गुड़ और पानी। बहुत अच्छी चीज है वो, गुण का ही लगता है, अपभ्रंश हो गया गुण। गुण गुण शब्द होगा शायद, जिसका गुण ही गुण है, अवगुण जिसमें है ही नहीं। तो गुजरात में तो प्राय जितनी मिठाइयां बनती सब में गुड़ ही डालते हैं, गुड़ का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो गुणस्य मधुर गुण स्वभाव, तस्य मधुर गुणस्य नाशे भवितव्य गुणस्य एव नाशो स्यात्। गुड़ की मधुरता यदि नष्ट हो गई तो समझ लो गुड़ ही नष्ट हो गया। तथा उसी प्रकार से जीवात्मनो दुखम स्वाभाविकम चेत, यदि दुख को जीवात्मा का स्वरूप माना जाए तो दुख के नष्ट होने पर जीवात्मा ही नष्ट होने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यदि दुख को हम अपना स्वरूप मानेंगे, स्वाभाविक मानेंगे, तो गुड़ के मधुरता की तरह जैसे वहां मधुरता समाप्त हो जाए तो गुड़ की उपलब्धि नहीं हो सकती, वैसे ही दुख को यदि जीवात्मा का स्वरूप माना जाए, जीवात्मा हो गया गुड़ और दुख हो गए उसके मधुरता, जैसे गुड़ के मधुरता है गुण, ऐसे जीवात्मा के ये दुख ही को ही गुण माना जाए, स्वभाव माना जाए, तो क्या होगा? दुख के नष्ट होने पर कौन नष्ट होगा? जीवात्मा नष्ट होने लग जाएंगे। तो जीवात्मनो दुखम स्वाभाविकम चेद दुख नाशे भवितव्य, आत्मा स्वरूप नाश एव स्यात। जीवात्मा नष्ट होने लग गया मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? अपने आत्मा का ही हम विनाश करने लगे। और आत्मा है कैसा? अविनाशी है, इसका तो कभी विनाश होता नहीं। आत्मनो नाशो नास्ति, आत्मा का नाश होता है ऐसा न देखा गया है न सुना गया है। अपने लोग तो सत्संगी है, हम लोगों के अंदर तो ये कूट कूट करके संस्कार भर गया कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, आत्मा हर हमेशा एक जैसे सदातन है, सनातन है, आदि आदि। लेकिन अब आप विचार कर सकते हैं कि इतने महापुरुषों के मुखारविंद से, शास्त्र आदि के प्रमाणों से, जिस आत्मा के बारे में हमने श्रवण किया, क्या जैसा इन्होंने बताया वैसा ही है या उससे भिन्न है? सबका निश्चय यही है कि जन्म से लेकर मरण पर्यंत सभी चीजों को हमने बदलते हुए देखा, लेकिन बदलती हुई चीजों को जो देखने वाला था वो वैसा का वैसा ही है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म की बात हो, इस जन्म में जिस शरीर को धारण किया उसको अभी देख रहा है, इससे पिछले शरीर में जब था पिछले जन्म में तभी इसने देखा था, और आगे जब अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर हमें मिलेगा उसको भी ये देखेगा। इसलिए भगवान ने कह दिया, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। एक बात तो पक्की है कि हम लोग पहले कहीं थे तभी तो यहां है ना, अभी कि अचानक ही आए कहीं से आए? भगवान की सृष्टि की जो प्रक्रिया है उस तरह से आए हैं इस शरीर में, लेकिन कहीं थे तभी तो आए, और यहां से जब जाएंगे तो कहीं न कहीं तो जाएंगे। अब ये है कि कहां जाएंगे मालूम नहीं, और कहां से आए हैं ये भी मालूम नहीं है। तो हम लोग कहां के हो गए, न इधर के न उधर के, बीच में लटके हुए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनान्येव, अव्यक्तादीनि भूतानि, जन्म से पहले हम अव्यक्त थे, और अव्यक्त निधनान्येव, निधन जब होगा तब भी क्या हो जाएंगे, अव्यक्त ही होंगे। तो व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, ये जो मध्य में अभी हम लोग जो व्यक्त हुए हैं, इसको क्या मान रहे हैं, यही सच्चा है। विचार करते हैं न हम पहले थे न आगे रहने वाले, लेकिन जो है पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहने वाला, वो कौन है, आत्मा, वही नित्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतरा या संविदुजृंभते, कहां पर है, मनीषा पंचक में, और दक्षिणामूर्ति है, बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि, सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, और बाल्यादिषु, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन सभी अवस्थाओं में जिसका स्फुटीकरण हो रहा है, स्फुरित हो रहा है, वह जो आत्मदेव है वो नित्य है, उसमें कभी कोई बदलाव। 90 साल की उम्र में अपने 5 साल की फोटो देखो, मैं ऐसा था, अचानक यदि कोई दिखा देवे तो पहचान में भी नहीं आएगा, बोले चश्मा लाओ तब तो देखूंगा तो बताऊंगा, तब वो कहेगा हाँ ये तो शायद मैं ही लग रहा हूं। एक अपने जीवन में ही 80-90 साल के शरीर को, फोटो को देख करके इतिहास जैसा लगता है, लेकिन जो बता रहा है अपने फोटो को देख करके कि ये मेरी ही फोटो है, का मतलब है कि ये मैं ही हूं, और जो अभी वृद्ध वाला शरीर है ये भी मैं ही हूं, शरीर बदल गया है, उस समय छोटी उम्र का बच्चा था, अभी वृद्ध हो गया, वो बुजुर्ग हो गया। तो ऐसे सारे परिवर्तनों को परिवर्तित होते हुए भी जो स्वयं अपरिवर्तित रहा, कभी बदलाव जिसमें नहीं आया, ऐसे आत्मा को बार बार जब हम लोग जानते हैं, चिंतन करते हैं, तो पक्का हो जाता है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है। और श्रुति में ये प्रमाण है, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, अरे भाई सुनो, ये जो आत्मा है ना अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, जैसे आकाश की सर्वत्र पहुंच है वैसे इस आत्मा की भी सर्वत्र पहुंच है, नित्य है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चिन् न बभूव कश्चित्, अजो नित्य शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसी को लेकर भगवान ने गीता में भी उदाहरण दिया, जबकि यह है कठोपनिषद का मंत्र, न जायते म्रियते वा, वहां कदाचित, यहां पर है म्रियते वा विपश्चित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय है, यहां पर है नायम कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, एकदम मिलता जुलता मंत्र है। और अगला पद तो गीता में भी वैसा ही जैसे यहां पर है, न हन्यते अजो नित्य शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। उसी को लेके फिर कह दिया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम न चैनम क्लेदयन्त्यापु न शोषयति मारुतः। इसलिए फिर क्या होगा, वो जब सबका निषेध हो जाएगा तो अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, तो आप गीता के दूसरे अध्याय में जो ये सब श्लोक हैं, इसको आप पढ़िए, इसके अर्थ को मनन करिए, बार बार समझ में आएगा कि आत्मा की वास्तविकता क्या है, उसका स्वरूप क्या है। और आत्मा का जो लक्षण है वो भी आप लोग जानते हो, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चाति विषयानिह, यच्चास्य संततो भाव, तस्मात आत्मा इति गीयते कथ्यते। इसको आत्मा बोलते हैं। यच्च आप्नोति, जो हमेशा अपने व्यापकता का बोध कराए। हम लोगों को क्या ऐसा लगता है, अभी तो मालूम है कि इस शरीर को लेके प्रेमपुरी के सत्संग भवन में बैठे हैं, लेकिन आप अपनी सत्ता का अनुभव अपने घर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पूरे इस दुनिया में हमारे अपनी सत्ता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो अपने आत्मा की व्यापकता का जो बोध है, ये भी आत्मा का ही लक्षण है। तो यच्च आपनोति, आपनोति व्यापनोति, बी लगा दो तो व्यापक बनता है। आपक मतलब प्राप्त करने वाला, प्रापक, प्र उपसर्ग प्रापक बनेगा, और बी उपसर्ग लगा देंगे तो व्यापक बनता है। तो आपलरी गतो से आपनोति बनता है। आपनोति मतलब प्राप्नोति, प्राप्त करता है, और व्यापनोति का मतलब व्याप्त करता है। तो आत्मा की जो व्यापकता है, हमें सर्वत्र सब चीज उपलब्ध है ऐसा बोध सबको हो रहा है। शरीर परिच्छिन्न होने से, सीमित होने से अभी यहां बैठे हैं, भले ही घर में चाय है तो थोड़ी पी पाएंगे यहां से बैठे बैठे, तो चाय पीना इस शरीर से, तो इस शरीर को जाना पड़ेगा वहां। लेकिन आत्मा के रूप से जो चाय है अथवा नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे आत्मसत्ता वहां भी है, यहां भी है, पूरे दुनिया में है, ब्रह्मांड में, 14 भुवनों में, कहीं पर भी इसकी कोई कमी नहीं है। तो यद चापनोति और यद आदत्ते, आदत्त मतलब ग्रहण करना, लेना देना, चलना फिरना इस आत्मा के सत्ता से ही हो रहा है। और यहां तक कि जो स्वप्न अवस्था में मन सपना देखता है, सृष्टि आदि की रचना करता है, यदि अचानक सोते हुए ही व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो जाए, मिर्गी आ जाए। अभी एक सज्जन गए, कुछ दिन पहले की बात है, पिछले महीने कुछ नहीं हुआ था, रात में 2-2.5 बजे तो अपने बच्चे से बात कर रहे थे, विदेश गया था घूमने, बेटा कहां पहुंच गए, तुम क्या कर रहे हो, सब बात हो गई 2-2.5 बजे रात में, सोए होंगे। और कब हुआ तो डॉक्टर ने जब देखा होगा, सवेरे नाक से थोड़ा खून भी निकला था, तो डॉक्टर ने देख के बता दिया कि 4 बजे के आसपास शरीर छूटा हुआ है। अब अकेले थे कमरे में, कब मिर्गी जैसा दौरा पड़ा होगा या ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्लड आया नाक से, कब गए किसी को मालूम नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि 4 बजे के आसपास शरीर छूटा हुआ है। तो ऐसा ऐसा तो हम लोगों का शरीर छूट जाता है। तो जो सोते हुए व्यक्ति बिना वस्तुओं के ही अपने मानसिक संकल्प से ही अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कारों से अथवा जागृत अवस्था के अनुभवों से जो हमारे मन में है उसके आधार पर जब स्वप्न देखते हैं तो वह भी आत्मा की सत्ता से ही होता है। मन तो जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। और यच्च अति विषयान इह, यहां जो हम लोग विषयों का उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ये भी उसी आत्मा की सत्ता में। और यच्च अस्य संततो भाव, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के सारे व्यवहारों को देख करके भी जो हमेशा नित्य निरंतर जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं है, स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति नहीं है, लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में जो है, यह है उसकी संतता, नित्य निरंतरता। शरीर बदल गए, युग बदल गया, पंचदशी में क्या पढ़े शुरू में, मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्येश्वनेकधा नो देती न अस्तमेती एका संविद एषा स्वयं प्रभा। ये जो संविद है, जो प्रभा ज्ञान स्वरूप आत्मा, मास अब्द कल्प सब चले गए, वही है दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशा वायु पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनम् पुनरपि वर्षम् तदपि न मुंचत्याशा मरसम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये दो तरह के श्लोक मिलते हैं उसमें नहीं, दिनमपि रजनी ये है और एक है पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास पुनरप्ययनम पुनरपि वर्षम तदपि न मुंचत्याशा मरसम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चरपट पंजरिका और द्वादश पंजरिका तो पढ़ते रहो ना, पढ़ते पढ़ते समाधि लग जाती है यदि उसके अर्थ आपको मालूम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राप्ते सन्निहिते मरणे और नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते बहुत अच्छा है। और शंकराचार्य जी का एक वो है ना गंगा स्तोत्र, वो भी कितना अच्छा है, वो इसी ध्रुव पद में ही चलता वो भी, जिसमें है वो भगवती तवती रे, हाँ ये तो गंगाष्टक में, देवी सूरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। ये है तो उससे मिलता जुलता है उसी छंद में, कोई भी श्लोक बोलो ना धुन से एकाग्रता से ध्यानपूर्वक श्लोक के अर्थ मनन पूर्वक ही पढ़ते पढ़ते आनंद आता है, और नहीं तो एक होता है बस ड्यूटी है बोलना है, गला सूख रहा है, संडे है तो 15वां अध्याय का पाठ करना ही है, 12वां अध्याय का पाठ करना ही है, बार बार घड़ी भी देखना है, तो क्योंकि आनंद नहीं आ रहा है ना, एक बोझा जैसा ड्यूटी करना है, और एक होता है आनंद के साथ करना, इसीलिए सब पाठ किया जाता है। इसको आप ये मत समझना केवल पाठ करना ही है, इसमें आनंद भी आना चाहिए, तब पाठ करने का महत्व है। आत्मा का स्वरूप बताते हुए जो ये श्लोक है, यच्च आपनोति यद आदत्ते यदादत्ते, यच्च आपनोति यदादत्ते, यच्च अति विषयान इह यच्चाति विषयानीय, और यच्च अस्य संततो भाव तस्माद् आत्मा इति कथ्यते। ये आत्मा का लक्षण है। तो आत्मा अविनाशी वा अयम आत्मा, और दूसरा कठोपनिषद का उदाहरण भी दिया, बृहदारण्यक का है अविनाशी वा अयम आत्मा, और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये सब कठोपनिषद के उदाहरण है। तस्मात आत्मनो दुखम स्वाभाविकम न भवती, इसलिए जीवात्मा के अंदर होने वाला जो दुख है वह स्वाभाविक नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वभाव होता है वह स्वस्वरूप होता है, स्वस्वरूप का नाश कोई चाहता नहीं, और दुख को हम लोग नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमारा स्वरूप हो नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए, निचोड़ क्या निकला, तो किंतु आगंतुकम एव इति जानी ही। गुरुदेव कह रहे अपने शिष्य से कि हे तात, तुम उसको आगंतुक ही समझो, किसको, दुख को, अर्थात हम लोग जो अभी दुख का अनुभव कर रहे हैं ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये बल्कि आता है, आने के कारण इसका नाम पड़ा आगंतुक, आगंतुक का मतलब आने वाला, जो आगंतुक होगा उसको अब क्या बनाना है, जागंतुक, हाँ जाओ भाई, जो आया है वो क्या होगा, जाएगा, पहले नहीं था इसलिए आगे भी नहीं रहेगा। अब वर्तमान में जो दुख का अनुभव हो रहा है, तो दुख और सुख जो शब्द है ये अपने आप में ही अर्थ का बोध करा देते हैं। विषयों से जो अनुकूलता की प्रतीति होती है उसी का नाम है सुख, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूलता है इसका नाम है दुख। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी कर रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, नंद घर सुख भयो, नहीं होता। जैसे भोजन करके एक होता है पेट भरना और एक होता है भोजन करके तृप्त होना, दोनों में बड़ा अंतर है ना। आप घर से बाहर जब होटलों में खाओ या कहीं भी दुनिया में खाओ तो बोलते हैं बस जी पेट भर गया, लेकिन जब घर में खाते तो क्या बोलते हैं, तृप्त हो गया, आज अपने ढंग का भोजन मिला। अरे वाह, इस भोजन की कोई कीमत है क्या? वहां इतने पैसा खर्च करके भी वो तृप्ति नहीं मिलती जो अपने घर में भोजन करने के बाद तृप्ति मिलती है। हर चीज में ऐसा ही है। आप औपचारिकता के लिए व्यवहार कर रहे हो, सबके साथ हंस रहे हो, बोल रहे हो, फॉर्मेलिटी है, वहां मन में कोई तृप्ति नहीं है। और जब अपने मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब तो घंटों बात करे ना, वहां कोई समय की सीमा है ना, कोई महीने ना कोई वर्ष, किसी के पास तो दो घंटा भी बैठा तो बहुत बैठ गए, बहुत ज्यादा टाइम क्या हो गया, क्योंकि वहां हम एक फॉर्मेलिटी में लगे हैं। और जहां आपका स्वभाव है, व्यवहार की बातें ये सब, जो हमें चीज अच्छी लगती है, अपनत्व तो जहां होता है वहां कोई समय आदि की भी मर्यादा नहीं रह जाती है। हर चीज में ऐसा घटा लेना चाहिए। तो दुख भी जो है हम लोगों का अपना स्वभाव नहीं है, आया है, अभी जाएगा कैसे, तो अपने स्वरूप के बोध न होने से अभी तक बना हुआ है। जब तक ये अज्ञान रहेगा तो अज्ञान से ही ये सारी चीजें पैदा हो जाती है। अज्ञान से क्या पैदा होगा? अविवेक। अविवेक से होगा अभिमान। अभिमान से होगा राग द्वेष। राग द्वेष से होगा कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी, कोई कर्म करेंगे। कर्म कब होगा? जब शरीर होगा, जन्म मिलेगा। और जन्म कब होता है? हाँ, जन्म क्यों होता है? दुख भोगने के लिए। इसलिए जन्म न लेना पड़े, जन्म न हो तो दुख भी न हो, जन्म हुआ है तो दुख होगा। इसलिए अब आगे के जन्म न लेना पड़े इसकी तैयारी करनी, जो अभी जन्म हुआ है मरण भी होगा निश्चित है। इस समय जो भी दुख का प्रारब्ध चल पड़ा है, कल उदाहरण दिया था कि जानवर को समझ के बाण चलाया लेकिन बाद में पता चला ये गाय है, जैसे उस बाण को वापस नहीं किया जा सकता, वो तो उसमें जाके लगेगा ही, ऐसे ये प्रारब्ध का जो बाण इस शरीर रूपी जानवर के लिए जो चल पड़ा है, भले ही अब ज्ञान होने के बाद ये जानवर शेर न होकर गाय बन गया, लेकिन इस गाय को तो जाके लगना ही है क्योंकि वो बाण चल चुका है। तो उससे बचना है, तीनों कर्मों को समाप्त करना है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, जो शरीर रहते हुए इससे बचा नहीं जा सकता, तो शरीर ही नहीं होगा तो ये कर्म भी लागू नहीं होंगे। शरीर कब नहीं होगा? जब कर्म नहीं करेंगे, लेकिन कर्म तब तक होते रहेंगे जब तक राग द्वेष होता रहेगा, और राग द्वेष तब तक होता रहेगा जब तक अभिमान होगा, और अभिमान तब तक होता रहेगा जब तक अविवेक रहेगा, और अविवेक तब तक होता रहेगा जब तक अज्ञान रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा भयंकर यदि कोई है तो कौन है? अज्ञान। बहुत ही कल अज्ञान का लक्षण बता दिया था, अनादित्वे सति भावत्वे च सति ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञानस्य लक्षणम्। ये अज्ञान का लक्षण है, क्योंकि अज्ञान को पहचानना जरूरी है, तभी तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, कई लोग चले जाते हैं समाधि में, उठ जाओ भाई उठने का समय हो गया, उठाओ उनको अपने पीछे उठाओ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत छुरस्य धारा निशितं दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ती। ये है कली शयानो भवति, जब हम सो जाते हैं ना कलियुग आ जाता है अपने ऊपर। संजिहानस्तु द्वापर जगे तो द्वापर युग आ गया। उत्तिष्ठस त्रेता भवति, उठ के चल पड़े तो क्या हो गया, त्रेता युग आ गया। और चलते रहो चलते रहो, चरई वेती सतयुग आ गया। ये चारों युग का अनुभव हम लोगों को पूरे दिन भर में होता रहता है। तो इसलिए यहां पर आप लोग सतयुग में हो, यहां कलयुग मत लाना भाई। अनादित्वे सती भावत्वे च सती, ज्ञान अज्ञान कब से प्रारंभ हुआ ये कोई बता नहीं सकता, इसलिए अनादि है और भाव रूप है। दूसरा लक्षण अनादित्वे सती और भावत्वे च सती। भाव का मतलब होता है होना रहना, ये माला का भाव है, मतलब माला यहां है, माला का अभाव है, माला नहीं है। तो भाव और अभाव, अज्ञान भाव रूप है, मतलब है, ये सबको मालूम पड़ता है। भले ही प्रकाश होने के बाद अंधकार जाएगा, लेकिन जब अंधकार है तो है ना, बोलते हैं। वैसे ही अज्ञान का मतलब भी होता है। कल ये कहा था कि न ज्ञानम अज्ञानम, ये अर्थ नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि ज्ञान जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो सत्य अनंत ब्रह्म रूप जो ज्ञान है वो नित्य है। और न ज्ञानम कहेंगे तो आपने थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए ही सही, ज्ञान की सत्ता को आपने स्वीकार नहीं किया। न ज्ञानम अज्ञानम करेंगे अर्थ, तो आपका जो ज्ञान है ये अनित्य होने लग जाएगा। तो क्या अर्थ करना है, ज्ञान विरोधी अज्ञानम, जो ज्ञान का विरोधी है उसका नाम है अज्ञान। तो अनादि है और भाव रूप है, भाव रूप का यह अर्थ है विरोधी रूप, जो अज्ञान है। कहेंगे फिर ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान भी अनादि है और ज्ञान भी भाव रूप है। जैसा अज्ञान वैसा ज्ञान, दोनों एक समान ही लग रहा है। कहा यहां तक तो दोनों एक जैसा ही है, अनादि भी है भाव रूप भी है, लेकिन एक खासियत है ज्ञान की अपनी और अज्ञान की भी अपनी। ज्ञान जो है ना अज्ञान को निवृत्त कर देता है, और अज्ञान ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होता है। ये इस दोनों की अपनी अपनी खासियत है। अब आप कहेंगे कौन सा ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, तो जिस संबंधी अज्ञान होगा, जिस वस्तु संबंधी अज्ञान होगा, उसी वस्तु से संबंधित ज्ञान उस अज्ञान को नष्ट करेगा। माला का यदि हमें अज्ञान है, तो माला संबंधी अज्ञान को कौन सा ज्ञान दूर करेगा, माला का ज्ञान ही इस अज्ञान को दूर करेगा। माला के अज्ञान को माइक के ज्ञान से दूर नहीं किया जा सकता, पक्का हो गया। उसी प्रकार से अपने स्वरूप का जो हमें अज्ञान है, इसलिए स्वरूप के ज्ञान से ही ये अज्ञान दूर होगा। ये तो उदाहरण है, जबकि होता तो ये है, माला को जानने वाला माला नहीं होता, माला का ज्ञान वाला होता है। एक तो माला का अज्ञान था, ये माला के ऊपर जो आवरण है, आवरण को भी भंग करते हैं ना, बोलते हैं वृत्ति ज्ञान जिसको बोलते हैं, मालाकार वृत्ति बनना। और ये जो अपने स्वरूपाकार वृत्ति बनती है, जहां पर पंचदशी में तृप्ति दी प्रकरण में इसको बोलते हैं, एक होते हैं स्वरूप व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति, दो बनते हैं ना। तो माला को जानते हैं ये वृत्त्यात्मक ज्ञान है, मालाकार वृत्ति बनी अंतःकरण में और माला का ज्ञान हुआ। और इससे आप क्या कहते हो कि मैं माला का ज्ञान वाला हुआ। लेकिन यहां पर जो अपने स्वरूप के ऊपर आवरण जब भंग हुआ, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञान वाला नहीं होता, बल्कि ब्रह्म ही हो जाता है। हाँ, तो अपने क्या हाँ फल व्याप्ति नहीं होगी ना, फल में वही वृत्ति व्याप्ति जो है, ये जो है वस्तु से वस्तु का ज्ञान होना और स्वरूप का ज्ञान होना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, लेकिन उससे अतिरिक्त वस्तुओं को जानने वाला उस वस्तु का ज्ञान वाला होता है, वो वस्तु नहीं होता। तो ये उदाहरण है कि जिस संबंधी जो अज्ञान होगा उसी वस्तु का जब ज्ञान होता है तो वह अज्ञान निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों को जो अपने आत्मा के ऊपर अनात्मा का जो आवरण है, इस आवरण को भंग करते ही हमें क्या बोध होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मस्वरूप हूं। आगंतुक दुख है, स्वाभाविक दुख नहीं है। इतने बात होने के बाद भी शिष्य का मन संतुष्ट नहीं हुआ। ये सब हम लोगों के बोध कराने के लिए, उनको तो ज्ञान है ही। अब एक शंका उठाते हैं कि आपने कह दिया कि दुख को स्वाभाविक मानते हैं, स्वरूप मानते हैं, तो स्वरूप का ही नष्ट नाश होने लगेगा, इसलिए इसको आगंतुक मान लो। लेकिन शिष्य कहता है कि गुरुदेव मैं ऐसा मानता हूं, अग्नि का जो स्वभाव है उष्णता, लेकिन उस उष्णता को हटाने के लिए मणि का प्रयोग किया जाता है। चंद्रकांत मणि आदि को अग्नि के पास रखने के बाद अग्नि की जो अपनी शक्ति है, दाहकत्व शक्ति, जलाने की शक्ति, उसको वो शांत कर देती है मणि। यहां तक कि अग्नि में शीतलता आ गई है ऐसा लगता है, लेकिन अग्नि की जो अपनी चमक है, जो उसका स्वरूप है, वो बना रहता है। वहां मणि के द्वारा अग्नि का स्वरूप कहां नष्ट हुआ? आप अग्नि का स्वभाव मानते हैं क्या? जलाना, उष्णता, और मणि के द्वारा आपने उसके स्वभाव को तो दूर किया, लेकिन अग्नि का जो अपना स्वरूप है वो बना रहा। तो आपने कैसे कह दिया कि स्वभाव के नष्ट होने से स्वरूप नष्ट होता है? वैसे ही कर्मों के द्वारा दुख को भी क्या किया जा सकता है? हटा दीजिए और उसका जो अपना स्वरूप है वो बना रहेगा। ये अब एक पक्ष है, इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि उन्होंने स्वभाव और स्वरूप एक बता करके ये हवाला दिया कि दुख हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वरूप हो जाएगा और स्वरूप नष्ट कोई करना नहीं चाहता, इसलिए कोई दुख नष्ट करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, सत्कर्म आदि में कोई प्रवृत्त नहीं होंगे, इसलिए इसको आगंतुक मान लो, स्वाभाविक मत मानो। अब पुनः शिष्य कह रहे हैं कि स्वाभाविक मानने पर भी जैसे अग्नि का स्वरूप तो बना रहता है और उसका स्वभाव दूर हो जाता है, वैसे ही इस दुख का जो स्वरूप स्वाभाविक मानने पर, स्वरूप मानने पर भी इसके जो स्वभाव है उसको हटा देंगे और स्वरूप भी बना रह जाएगा, परेशानी क्या है? ये अब शंका है, इसका समाधान फिर होगा कल। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, जरा आप लोग को ध्यान देना है, और आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ हैं जो समाधि में भी चले जाते हैं, या तो उनकी रात में नींद पूरी नहीं होती, या कहते हैं कि हाँ कथा बहुत अच्छी होती है, नींद अच्छी आ जाए तो क्या होना चाहिए? कथा अच्छी होती है। हरिओम।